राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 जून सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।
राम 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 राकृष्ण परम ब्रह्मी सौंदर्य सर्वस्व वंदे नंदाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता देवकी परमानंदम कृष्ण वंशी विभूषित करांदर मुखा कृष्ण नारायण 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 राम 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 नारायण 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 एवं सदात्मान योगी दिगत कल्पस योगी नियत मानस शांति निर्वाण परम संस्था योगी दिगत कल्पस सुखेन एवं सदात्मान योगी नियत मानस निर्वाण परमाणु शांति में योगी विगत गर्म से सुखी नियम सर्वभूत इसमें शांत रजसम कह रहा है। इन नियम सदात्मान योगी नियत मान से
योगी
नहीं वो शांत रजसम
शांति निर्वाण परमा शांति निर्वाण
परमाणु मतलब वो तो पहले 1300 वहाँ और इंजन एवं सदात्मान योगी विगत कर्म अत्यंत थे सर्वभूत स्वाम आ गया ये तो 29 आ गया 28 आया प्रशांत मन समझे शांत रजसम क्यों कहा ये पूछते शांत रजसम तो शांत रजसम कहने से तमोगुण प्रशांत हो ही गया। अब शांत सतोगुण गया तो आगे विगत कर्म सका इसके बाद में उपरीत शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकर्मसम अकर्म का ब्रह्मभूत अकर्म कोई कर्म नहीं रहा सत्व रज तम आदि कोई भी तो शांत रजसम क्यों कहा वास्तव में क्यों कहा भगवान जाने भाई अपने विशेष जानते नहीं है पर शांत रजसम कहने का मतलब है कि मनुष्य के रजोगुण की ही मुख्यता है रजसि प्रलय मध्य मध्य तिष्ठन्ति राजसा राजस मध्य लोग में रहते हैं मानो मनुष्य लोग में रजोगुण की प्रधानता है और नरकादि में तमोगुण की प्रधानता है ऊर्ध लोगों में सत्वगुण की प्रधानता है जो शांत रजस हो जाएगा तो सत्व में अटकाव नहीं होगा अटकाव रजोगुण में होता है रजोगुण है उसके बाद तमोगुण नजीक आता है जैसे जो राकात्मक वृद्धि तो राग स्वरूप है तो आया है रजोरागात्मक विधि कृष्ण संघ सुनाती जाए तो विषयान पुरुष संगस्तेषु जायते संगात संग जायते काम ये काम तक तो रुजुगुण हुआ काम क्रोध हो भी जायते ये क्रोध रजोगुण से मिला हुआ तमोगुण आया और क्रोध आदि समूह तमोगुण आ गया बढ़िया एकदम अगर अपना पतन हो जाता है तो रजोगुण है ये सतोगुण तमोगुण दोनों तरफ चलता है ये शांत हो जाएगा तो सतोगुण ही जगह ही चलेगा सतोगुण को विगत कर्म से कराए वो सतोगुण ही हो जाएगा ऐसे युजन एवं सदात्मान योगी विगत कर्म से सुखी अत्यंत सर्वभूत अत्यंत सुख प्राप्त होगा फिर सर्वभूत ये हो जाएगा तो 28वां श्लोक कैसे हुआ 28वां श्लोक
योगी विगत कल्प से
योगी विगत कल्प से
योगी विगत कल्प से 27वां प्रशांत मन संगेनम योगी नम सुखमुक्तम
उपरि शांत रस 27 में है इस 27 में 27 है मैंने 28 में दिखा शांत रस सुन तो ब्रह्मभूत होने के लिए तो तीनों गुणों से ही रहित होना चाहिए तो विगत कर्म से कहा ना अगर ही तो तीनों गुण से हो जाएगा मुख्य रजोगुण ही मुख्यता है रजोगुण की मुख्यता है मनुष्य में ये शांत होने पर सतोगुण शांत हो जाएगा सतोगुण से देखो रजोगुण तमोगुण तो अधोगति में ले जाने वाला है सतोगुण अधोगति में ले जाने वाला नहीं है अटकाने वाला है तो ब्रह्मभूत के पास में पहुंच जाता है शांत रजोगुण जैसे ब्रह्मभूत के पास में अनामय पद परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए आता है पदम गच्छन्ति अनामय कैसे श्लोक वो अनामय पद को प्राप्त होते हैं दूसरे
ज्ञान
जन्म बंध को पदम गच्छन्ति अनामय अनामय कहा ना सत्वगुण का स्वरूप क्या है तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम जैसे ब्रह्म स्वरूप अनामय है ऐसे सत्वगुण भी अनामय है तो सत्वगुण बांधता तब है जब उसमें सुख संज्ञान बुद्धि ज्ञान संज्ञान सुख संग ज्ञान संग नहीं करेगा तो सत्वगुण बांधेगा नहीं संग में रजोगुण का संबंध आता है संग है ना संग राग आसक्ति संग ये रजोगुण के साथ मिलने से सतोगुण बांधता है केवल सतोगुण बांधता नहीं है सतोगुण को अनामय कहा परम पद को भी अनामय कहा तो सतोगुण अनामय है पर उसमें जो सुख मिलता है ज्ञान मिलता है उनका संग करेगा तो बंध जाएगा बंध रहने अधोगति नहीं होगी परमात्मा की प्राप्ति में रुकावट होगी शांत रजगुण शांत हो गया तो फिर तो सतोगुण हुआ अनामय अनामय प्राप्ति सुधे हो जाएगी ख्याल में आएगा नहीं पता नहीं मानो अनामय पद सतोगुण में बढ़ाता है और परमात्मा की प्राप्ति में भी अनामय पद आता है अनामय पद दोनों आता है तो अनामय पद मानो जिसमें कोई आमय ना रोग का है कोई परमात्मा की प्राप्ति में बाधा देने वाला नहीं है उसको अनामय कहते हैं आमय नहीं रोग नहीं सब शांत हो गया तो रजोगुण शांत होने के बाद वो सुख संग ज्ञान संग नहीं होगा ज्ञान और सुख से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी इस बार शांत रजोगुण वास्तव में क्या है भगवान जाने साधक समझी में देख रहे हो भाई सार कोई चीज है तो पूछ ले कागज ने बड़े लंबू छोड़ो कोई सार चीज ये पड़ा है कोई सार हो तो पढ़ो कठो पड़ा इतना आदमी अड़ी के व्याख्यान के लिए अब इतना पुथी कैसे पड़ जाए समय
घट एक अलग दिया है आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अभी चिंतये।
बहुत ठीक है,
इस कथन को अच्छी तरह समझा दीजिए।
मैंने मेहनत बहुत की है, ये किंचित भी न चिंतिए इसके लिए मैंने बहुत कहा है, इस साल को ज्यादा ही कहा है। कुछ भी चिंतन न करे, चुप साधन है ये, कर्म निरपेक्ष साधन है। कर्म इसमें चिंतन करना नहीं पड़ता, चिंतन करना कर्म होता है, इसमें कर्म रहित है। ये मैंने बहुत कहा है, लोग उतरा गए मेरे सामने से, इसने गिनती कर बताया तीन विभाग दूसरे एक विभाग केवल तुम्हारे कर्म रहित का है। व्याख्या नाम है बताओ, अब इसको कितना विस्तार बताऊ, अरे बताऊंगा तो उकसा जाओगे आप। मेरे तो देखो बता रहे मैं रस आता है, मैं तो खुद सुख भोगता हूँ, भोगी हूँ इस तरह का। तो कोई आदमी पूछे तो कहने में आनंद आता है, जिसमें ये ऊंची बात कहने में तो बहुत विशेष सार्थक इसकी आनंद ही होता है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिन्तये, बहुत सुगम बात बताओ। इसका अर्थ बहुत सरलता से, आप चाहो तो हरेक भाई बहन कर सकते हो, इतनी सुगम बात है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा में बड़ी दुर्बल कठिनता से, कि परमात्मा मन को कैसे लगा है। मन तो बुद्धि से भी पर, बुद्धि से भी परे परमात्मा तत्व है, प्रकृति से भी अतीत है, उस आत्मा में मन कैसे लगा दे। तो उसके लिए बहुत सुगम बात बताता हूँ, साधक करना चाहे तो। सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, ये मान रहे, सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संसार में, मात्र में परमात्मा है। हो गया मन, ये आसन से मन हो गया, सब में परमात्मा है इतना मान लिया, ये आत्मसंस्थ मन हो गया। कितनी सोरी बात है बताओ,
सब कर्ण में,
सब कर्ण गया, कर्ण मिट जाएगा, कर्णों में और अंतकरण में और कर्ण में और इंद्रिया में और शरीर में, प्राणों में, सब जगह, और जड़ में, चेतन में, स्थावर में, जंगम में, स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, पाताल में, वैकुंठ लोक में, सब जगह परमात्मा है। अब बात मान लेना ही आत्मसंस्थम मन कृत्वा, कितनी सोरी बताओ, है परमात्मा। ऐसे और बैठ जाओ, ध्यान दीजिए अब इस बात को, ख्याल कर दिया कृपानाथ, और समझ में नहीं आओ तो मानो फिर पूछो। मेरा गुस्सा करने का मन नहीं है, आप बार बार पूछो तो भी मेरा विचार ही नहीं है। एक भाई ने पूछा था कि महाराज जी हमारे वहां से क्रोध तो नहीं, क्रोध तो नहीं, नाराज तो नहीं होते, तेरे नाराज, तेरे प्रति नाराज होने से राम जी मिल जाते हो जाऊ, मेरे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, नाराज होने से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, अगर भगवान मिलते हो तो नाराज हो जा और मेरे क्या प्रयोजन है। तो आप पूछो बार बार, जहां तुम नाराज नहीं होगा, अगर हो जाऊ तो मैं को तो छोड़ दो, दूसरे से चिंतन करो, छोड़ दो बस, पिंड मत छोड़ो। उस समय में नाराज हो गया, अच्छा ऐसे चुप हो जाओ, तेज हो गया, नाराज हो गया, आवाज सुन दो, दूसरे से हम फिर वही बात मैं पहले कहूँ मेरे पिंड मत छोड़ो, जो समझ में धारा नहीं आवे जितने तक तुम मेरा पिंड मत छोड़ो, गुस्सा आ जाओ तो चुप हो जाओ, कभी अब तेजी आएगी अब रहने दो, समझे। अरे मेरा विचार गुस्सा करने का है नहीं, विचार ही नहीं है, क्यों गुस्सा करूंगा, गुस्सा करूंगा, नाराज होगा तो मेरे क्या लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आत्मसंस्थम मन कृत्वा कृपा पूर्वक ध्यान देन, बिल्कुल सुगम बात बताता हूँ, बहुत सॉरी। अब जो आत्मसंस्थम मन कृत्वा कितना सुगम बताया, मानो परिपूर्ण परमात्मा है, वस्तुओं का तो अभाव है पर परमात्मा का अभाव नहीं है, लोगों का अभाव है पर परमात्मा का अभाव नहीं है, अवस्थाओं का तो अभाव है परमात्मा का अभाव नहीं है, व्यक्तियों का तो अभाव है परमात्मा अभाव नहीं है, घटना का तो अभाव है परमात्मा का अभाव नहीं है, कितनी अभाव से परमात्मा के सिवा सब चीजें सब जगह सब समय नहीं मिलती, अभाव मिलेगा पर परमात्मा का अभाव मिलेगा ही नहीं, तो उसकी तीसरी बात है ऐसे मान लेना है, ये आत्मसंस्थान बने करते है। अब केंद्र भी न चिंतित है, अब ध्यान दे उसमें ऐसी सोई बताओ, इतनी सुगम बताओ मेरी तरफ से, अगर कठिन लगे फिर पूछो कि इसमें ये कठिनता आ गई, इसमें ये कठिनता आ गई, खूब पूछो। अब किंचित भी न चिंतित, इसका इतना ही अर्थ है कि आप चिंतन मत करो, कुछ भी चिंतन मत करो, न संसार का न परमात्मा का न अच्छा न मंदा, कुछ भी चिंतन मत करो, ध्यान देना। अब बहुत सुगम बात बताता हूँ, आज संस्कृत मैंने कृत्वा हो गया, अब कुछ भी चिंतन करे नहीं, अब चिंतन न करने पर चिंतन हो जाता है, चिंतन आ जाता है, तो आ जाता है वो करने में नहीं है, आपसे आप आता है उसको पाप नहीं लगेगा, आपसे हवा बह जाएगा मेरे को पाप लग जाएगा, आपसे आप वर्षा हो तो क्या दोष लग जाएगा, आपसे आप गर्मी पड़े तो क्या हमारा दोष हो जाएगा, आपसे आप सर्दी पड़े तो हमारे गुनाह हो जाएगा कोई, ऐसे चिंतन आपसे आवे उसकी परवाह मत रखो, अपनी चिंतन नहीं करना है, इतनी बात, कुछ भी न चिंतन करे, एक बात। दूसरी बात फिर कहता हूँ, चिंतन हो जाए तो उसके साथ मिलो मत, ये चिंतन मेरा है ऐसा मत मानो, कुछ भी चिंतन करो नहीं, अगर हो जाए चिंतन तो उसके साथ अपने को मिलाओ मत कि मेरा चिंतन है, एक चिंतन मन में हो रहा है, आप तो मन से पड़े हो, मैं तो कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ, कर्ण में होगा चिंतन, आप में चिंतन होगा नहीं, समझेगी नहीं बात, कठिन नहीं है, बहुत सीधी बात है, चिंतन होता है तो मन में होता है, आप में कहाँ होता है, अचिंत रूपम आदित्य वर्णन तमसा परस्तात, अचिंत रूप है उसे चिंतन नहीं होता, परमात्मा तत्व का मन चिंतन कर नहीं सकता, वो अचिंत रूप है, चिंतन होता तो मन में होता है, मन है एक वृत्ति है, आपका क्या हुआ उस पर ही मत करो, आप चिंतन हो जाए उसको ना तो अच्छा समझो ना उसको मंदा समझो, ना ये मिट जाए ये समझो, ना कि ये रह जाए समझो, कितनी सुकून बात है, उसको बुरा भी मत समझो, भला भी मत समझो और अपना भी मत समझो, अपने में ये मत समझो, क्योंकि अपने में है नहीं, ये तो चित्त में है, इसमें कोई कठिन है तो बताओ क्या कठिन बात है, इस आत्मसंस्थ मन है कृत्य भी कोई कठिन नहीं, न किंचित भी चिंत ये किस चिंतित कर न करे तो करने का मना किया, बढ़ने का मना किया ही नहीं, तो हो जाए तो आपने दोष ही नहीं, अपना आप वर्षा हो तो पाप लग जाएगा हमारे, वो गर्म हवा चल तो पाप लगेगा, ठंडी हवा चलो तो पाप लगेगा, हम क्या करें, चलती है ऐसे मन में भी चिंतन होता है, कपड़ा हिले ही हो तो पाप लगेगा, पत्ता हिलता है पाप लगता है, हमारे दोष लगेगा, जब होता है हम क्या करें, तो होने का पाप नहीं लगता, करने का पाप लगता है, करने में फंसता है आदमी, समझ आया कि नहीं, ठीक है, चिंतित है तो उसकी उपेक्षा उदासीन, ना अच्छा समझना भला समझना, ना ये बना रहे समझना, ना ये मिट जाए ये समझना, हमारी क्या मतलब, घड़ी दुनिया में है, लोग गए ही मारे अब क्या करना, इसलिए उसमें हो गया चिंतन हो गया, अपने कोई समझ नहीं, उदासीन वदासीन हो गुणे जो विचार उदासीन वदासीन हम बोलो अब सही असल तुम तेसु कर तो उदासीन की तरह बस बिल्कुल तटस्थ, अपने कोई मतलब नहीं इनसे, ऐसा करते ही प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा, चिंतन करोगे मिल जाओगे तो प्रकृति के साथ रहेगा। पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते, पुरुषा सुख दुख का नाम भोगते तो हेतु है। कब के प्रकृति था और प्रकृति न हो और आप से आप जो स्थित जल में तो शरीर स्थो भी कौनते या न करो थी नलिपे शरीर स्थोगी न करो थी नलिपे से प्रकृति सुधा भूंगता है तो सम दुख हो जाएगा। क्या होगा सम दुख सुख स्वस्थ स्वामी स्थिति होगी। वो स्वामी स्थिति कर ली है कितनी सोरी बात है। आप ध्यान लगाने के और आंखें हमें सोर नाक नाक बंद करो कान बंद करो कितनी सोरी कितनी ऊंचे दर्जे की बात है बहुत ऊंचे दर्जे की है। तब तो साथ साथ कार्य होगा इसका फल और फल हो ही नहीं सकता। न स्वर्ग हो सकता है न कोई वैकुंठ हो सकता है न कोई ये धन हो सकता है न किसी लोक की प्राप्ति हो सकती है। लोक किसी की प्राप्ति होगी ही नहीं तत्व की प्राप्ति कोई विघ्न बाधा नहीं एकदम कितनी सरल बात है। अरे न हो बताओ बाधा लगा अब बताओ अब पूछो इसमें बाधा लगती हो तो पूछो करके देखो बाधा लगेगा तब पूछ लेना। अभी नहीं आवे समझ में करके देखो करने में बाधा लगे वो बात पूछो कि बात ये बाधा लगी इसमें एकदम मैं को याद को नहीं रह सको थोड़ा दोष नहीं है याद रखो नहीं वो दोष है सारो याद नहीं रह सको क्या दोष याद नहीं करो नहीं रखो या गलती है तो याद रखो ये थाने काम है वो दूसरे काम नहीं है। याद आप रखो नहीं रहे तो वो दोष थाने को नहीं थे रखो याद हरदम भगवान याद रखो हरदम ही लोग होता नहीं है इसमें क्या है बेईमानी है क्षमा कर देना क्या बेईमानी है क्योंकि हम तो दूध के धोए हैं ये याद नहीं रहता ये दोष इसका है हमारे पर है नहीं ये बेईमानी है इसमें याद रहता नहीं अगर छोड़ जाओ बरी नहीं हो सकोगा कभी मैं माफी होगी नहीं करते तो है नहीं कहते सो करते नहीं मुंह के बड़े लबार काला मुंडा होएगा साहिब के दरबार गई बोले पड़ता ऐसे ही होगा भाई और एक धंधर का है बुरा मानना मत अरे माना तो रोटी बदल जाना और क्या करूंगा ज्यादा बुरा मान लोगे तो भिक्षा नहीं दोगे और क्या करोगे सर। मैंने कहा याद रखने की चेष्टा आप करो अपनी तरफ से याद रखने के लिए उद्योग करो फिर याद नहीं रहेगा इसे इतना मत करो। अब याद रहेगा हम क्या करें हम तो रखते हैं आप रखने में कमी मत करो न होने में कमी मत करो नहीं होता इसमें कोई परवाह नहीं। अभी तो कहा कि आप तो करते नहीं अरे होता है तो होता है वो आप पर जिम्मेवारी नहीं ऐसे आप याद रखते और याद रहता नहीं तो आपकी जिम्मेवारी नहीं। कहते हम उठाना चाहते मकान नहीं उठता नहीं मकान हमारे उठता नहीं तो आप दोष नहीं है कहते को मकान नहीं उठता हम तो सिर पटक उठा रहे कोई सही सी है ही नहीं भाई। देखो सियाड़े में होता है अभी होती है गर्मी ये ठंडी हवा का सी है आरंग में गर्मी होती है भीतर गर्मी उससे वर्षा होती है बादल कर गर्मी कर बरसने की आस इसमें सी कहा है ठंडी नहीं है ऊपर से ठंडी हवा लगा ठंडी ठंडी अंतर गर्मी होती है। अब आते तो चिंतन होता नहीं ये दोष नहीं है चिंतन करते नहीं ये दोष साक्षात दोष बिल्कुल पक्का दोष है। करते रहो करते करते उत्तर भूल जाते वो दोष नहीं फिर करो फिर करो और ऐसे नहीं तब भगवान से कहो कि महाराज जी आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। मैं तो ये बात हर एक को कहता हूँ कि हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु भूलू नहीं। ये बात तो आत्म संस्तो मना कृत्वा न किंचित विचिन्तयेत, कितना सुगम काम है और ऊंचे से ऊंचा है। शेर जी ने पत्रों में अचिंत ध्यान कहा, शरणानंद जी इसको कौन कह रहे मूक सत्संग कह रहे, शरणानंद जी इसको मूक सत्संग कहते हैं, शेर जी इसको अचिंत ध्यान कहते हैं। मैं चुप रहना कहता हूँ, बात वही है, चुप रहना कर दो सर्वथा चुप, भीतर मन की दीवारी सब चुप रहना कर दो, चाहे अचिंत ध्यान कर दो चाहे मुख सत्संग कर दो, नाम जरा जरा है सी जी की, अपना अपना सिक्का है।
सेठ जी का प्राइवेट पत्र था वैसे का एकदम, हाँ हाँ
बात है,
प्राइवेट पत्र
विशेषता से ऐसे पत्र मेरे को मिले हैं, उसकी नकल भी कराई, सभी गोविंद रखी नारायण के पास रखी है वहाँ पकड़ ले तो सब प्रस्ताद आदि अचिंत रूप का, तो अचिंत होने अचिंत रूप भगवान का हुआ, परमात्मा का लेकिन सब चिंत अचिंत रूप है वो, अचिंत रूप तब सब प्रस्ताद, कितनी बढ़िया बात है, ऊंचे से ऊंची बात, कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा में ही स्थिति होगी, स्थिति परमात्मा में संपूर्ण जीवों की स्वति है, संसार के चिंतन से ही वहां से दूर होता है, अगर चिंतन करेगा नहीं दूर कैसे होगा। सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, उस दूर कब हुआ, आप उसको चिंतन करते हो तब दूर होते हो, नहीं तो चिंतन दूर हो नहीं सकते, भगवान की ताकत नहीं कि हमारे दूर हो जाए, और हमारी ताकत नहीं कि भगवान से दूर हो जाए, भगवान की ताकत नहीं दूर हो जाए कैसे दूर हो जाएगा, सब जगह परिपूर्ण दूर कैसे हो जाएगा वो, और हम परिपूर्ण से दूर कैसे हो जाएंगे, जब संसार का चिंतन करेंगे तो विमुख हो जाएंगे, दूर नहीं होते विमुख हो जाते हैं, आगे मिसले सूर्य दिखता नहीं, सूर्य नहीं दिखता सर, आग तो खोल के आग नहीं सूर्य दिखता नहीं, आग तो खोल बिना वो अचिंत रूप है, कुछ न कुछ चिंतन करो तभी संसार आएगा, परमात्मा का चिंतन करो तो संसार आएगा, संसार का चिंतन करो तो चिंतन आएगा, क्रिया करो तो प्रकृति में आएगी, प्रकृति प्रकृति है वस्तु और क्रिया स्वरूप प्रकृति है, उस क्रिया से चिंतन से भगवान की प्राप्ति कैसे कर लोगे, नहीं हो सकती, करके देखा बरसों कर दे लो फिर कर दे लो, प्रकृति का कार्य है, मन बुद्धि चित्त सब प्रकृति का कार्य है, परमात्म तत्व प्रकृति से अतीत, उसको चिंतन से कैसे प्राप्त कर लोगे, चिंतन कुछ भी नहीं करो, स्थिति परमात्मा में ही होगी और कहाँ होगी बताओ, आप बताओ कहाँ होगी, समुख सुख स्वस्थ स्व में स्थिति होगी, अपने आप में स्थिति स्वतः सिद्ध है, अब शंका करो, इसमें कोई शंका उठ से बोलो, ये चिंतन तो जो अचिंत नहीं हो सके तब है, अचिंत नहीं हो सके तो हे नाथ करो, तो करके भगवान को चिंतन करो, क्यों करो कि मैं अचिंत हो सकता नहीं, मेरी सामर्थ्य नहीं, तो प्रभु को पुकारो सामर्थ्य दो महाराज, तू याद नहीं उसमें, अत्यंत नहीं हो सकते तो भगवान से बल मांगो, जो का हमारे से काम नहीं होगा बड़ों से मांगो, कोई दोष नहीं है, आप हृदय से मांगो तो बल मिलेगा भगवान से, जरूर मिलेगा, क्यों भगवान का बल काम क्या आएगा, माँ का दूध माँ के काम आता है, गाय का दूध गाय का काम आता है, बकरे का काम आता है, तो भगवान बोल तो हमारे लिए ही है, भगवान काम आएगा। माँ का दूध माँ पीती है, माँ के दूध पर तो हक हमारा ही है। बताओ किस गए और ऐसे भगवान की शक्ति भगवान का सामर्थ्य तो हमारे लिए है वो, और किस लिए? संतों के पास महात्मा के पास जो ज्ञान है जो कुछ शक्ति है वो हमारे लिए ही है, उस पर हमारा हक लगता है। अब नहीं लो तो अब क्या करेंगे? लो तो राजी होगा। बस रात दूध पीने को जाता है तो शरीर में रहने वाला दूध थनों में आ जाता है। ऐसे सुनने वाले आते हैं तो संत महात्माओं का जो ज्ञान है वो यू आप पढ़ने लगता टपकने लगता है, सब आ जाता है। गाय का दूध चपके जोर ये ज्ञान चपकने लगता है, ढूंढने लगे ज्ञान, कोई मिल जाए ग्राहक बस आ तो जाए। एकदम बहुत सुगम बहुत सरल, कई बार कहा है कि इतना सरल काम कोई हो सकता नहीं, इसके सिवा सरल काम है ही नहीं। सुखे ब्रह्म संस्पर्श अत्यंत सुसुख कर तुम अभ्यम, नहीं हो सके तो भगवान पुकारो कि महाराज हमें तो होता नहीं, तो बल मिलेगा भगवान से मिलेगा, भगवान का बल हमारे लिए तो है। हम हकदार है उसके, माँ के दूध तो बालक के लिए होता है, माँ पिएगी। ऐसे भगवान की शक्ति हमारे लिए है, भगवान बहुत उदार, भगवान और भगवान के भक्त ये जैसे उदार होते हैं, उदार कोई हुआ नहीं है नहीं, इनके सिवाय कोई उदार नहीं है ऐसा, ऐसो को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही हेतु रहित जग दुगो पकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, ऐसो को उदार जग माही खुद जा रहे थे। उमा राम सब हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही, गुरु भी आ गए इसमें। उमा राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को जाए, उस परमात्मा के हम दुख पावे पर सन्मुख नहीं हुए, सन्मुख हुए जीव हुए जब ही जन्म कोटि अज्ञा से तब ही काम का जरूरत देने की जरूरत नहीं, कैसी बढ़िया बात है। आप तो मस्त रहो, मैं तो कहूँ आप खुश रहो, हरदम भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान के रहस्य की भीतर की बातें अपने को मिलती है, ये कृपा से मिलती है, वो दूध आ रहा है अपने बच्चों के लिए आ रहा है, पुष्टि के लिए आ रहा है, प्रवाह आ रहा है, राजी हुए प्रसन्न रहो। एक और बात बताओ, प्रसन्न रहना तपस्या है, दुख सहना कष्ट सहना तपस्या है, मन प्रसन्न है तपस्या गीता में लिखा है, मन प्रसाद है सौम्य तो मौन मातु दिनग्रह भाव संसुरित तपो मानस मुच्यते, शरीर वाणी और मन तीनों तप तीनों में तप मन का तेज, अरे मन का तप क्या होगा प्रसन्न रहना। तपस्या है
ये दोनों बातें चल सकती है क्या?
क्या
कि इधर तो नाम जप पर पूजा पाठ और ये और इधर ये विवेक विचार वाली आत्म संस्तंभ यानी ये बात
नहीं, ये दोनों साथ में वो तो क्रिया है ना, पूजा पाठ जपाली क्रिया है, ये भगत भगत पर कर देना, संध्या गायत्री जप पाठ समय समय पर कर देना, ये तो एक ड्यूटी है, ये तो एक टैक्स है। मनुष्य शरीर बन गया तो टैक्स कमाते हो, टैक्स लगता है कि नहीं? ऐसा पूजा पाठ का तो टैक्स है, ये कर देना चाहिए,
नित्य कर्म जो है
वो टाइम पर कर देना चाहिए, बस बस। फिर हरदम करो वो
बातें समझ नहीं आने लग गई तो इधर भी ख्याल जाता है और पहले से नीचे कर्म सुंदरकांड का पाठ कर लिए
भी करो कर मन इधर जाने लगता है वो तो गलती है पाठ जब पूछा पाठ गलती नहीं है ये तो टेक्स है आपको संध्या गायत्री तो करनी पड़ेगी
प्रकृति से छुटकारा पाने के लिए बताया कि ये ठीक है प्रकृति से छुटकारा मिल जाए जो प्रकृति का द्वंद बार बार तंग करते है उसे छुटकारा पाने के लिए अभी फरमाया वो थोड़ा दुर्बल है
क्या क्या उपाय छुटकारा पाने के लिए
प्रकृति से छुटकारा पाने के लिए आकाश में टूट जाए
क्या उपाय बताया
आपने क्या उपाय बताया पूछते हैं मेरे से
हे
नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे प्रभु दरिया बंद हरिया बंदी बांध करिए कूक पुकार हे प्रभु हे प्रभु दुखी होकर जितना तेज से दुखी होगा उतना जल्दी काम होगा निर्बल के बलराम बस राम जी काम सुना ही आता है बस तो निर्बल के काम आता है पता मैंने कहा भाई कोई नई बात मैं क्या सुनाऊं सुने मैं निर्बल के बलराम तो बस भगवान को ए नाथ मैं चीज छोड़ सकता छूट जाए ना राम की कृपा से पुकारो भगवान को भगवान का बल और क्या काम आएगा बताओ
विद्यार्थी का प्रश्न है महाराज जी अच्छा लगना बुरा लगना ये तो राग द्वेष है ना तो ईश्वर को अभिमान अच्छा नहीं लगता है तो ये तो राग द्वेष ही हुआ उनका
तो ईश्वर का
फिर वो सम कैसे हुए
तो ईश्वर को छुट्टी दे दो अच्छा दूसरी बात बताऊं राग द्वेष नहीं है हितैषी का है जैसे बालक को पढ़ाने के लिए गुरु थप्पड़ लगाते हैं तो राग द्वेष हो गया अरे राग द्वेष नहीं है उसका न पढ़ना उनको खलता है दुखता है इस वास्ते वे दुखी होकर के तुम्हारे को पढ़ाते हैं तो दुख राग द्वेष हुआ और राग द्वेष नहीं है हितैषी का है वह तो कृपा है अत्यधिक विशेष अपनापन है इन माओ को देख रहे मैंने कई बार कही है कि सब बच्चों को लड्डू दे सकती है जलेबी दे सकती है थप्पड़ नहीं दे सकती थप्पड़ तो अपने बच्चे के देंगे तो अपने बच्चे पर कोई बैर है थप्पड़ देंगे अपनापन है ऐसे भगवान गुस्से हो तो अपनापन है भगवान का संत महात्मा ये कृपा की ताड़ना करते हैं कड़ा बोलते हैं कृपा है अपनापन है अरे को कैसे कह जाए अब बाजार में जा रहे तो लड़ाई हो जाए बम्बई में एक भाई की शिकायत आई तो भाई कहता है मेरी स्त्री कैसी है तुम मेरे से कड़वे बोलते हो और तो शीख हुआ होगा तो मेरे से कड़वे बोलते हो और से नहीं बोलते कि और से बोलते तो मत पूछे लड़ाई हो जाए बोलता हूँ तुम अपनी है इस बार लड़ाई करेगी नहीं तो बोलता हूँ मैं भी एक कड़ी बोलता हूँ आप लोगों से बोलता हूँ बाजार में साथ बोलूँ तो क्या दशा हो तो और तो अपनापन है और राग द्वेष नहीं है हाँ तो कृपा है और तो अपनापन है बोलो मैं शंका करो जैसे शंका करी राग द्वेष है राग द्वेष नहीं है
ईश्वर कहते हैं समोह हम कहते हैं ना मैं सम हूँ सब समता है
तो समोह हम पर ये भजन दे तो माम भगते हैं मई ते ते सुता पे हमें अधिक है ना सम होने पर समदर्शी मोहि कह सब को पर सेवक प्रिय है बताओ अनन्य गति सो तो समदर्शी लोग कह मारे में समदर्श मार समदर्शी सब क्या सब लोग कहते हैं मेरे को तो प्यारा लगता है मैं समदर्शी कैसे हुआ ये तो कहते राम जी और कृष्ण जी कहते मैं तो समदर्शी हूँ लीला पुरुषोत्तम है महाराज जो कहते मैं हूँ सर सब मारे में पुरुषोत्तम है ही नहीं अब वो चिंता करे मैं क्या करूँ राम जी कहते समदर्शी लोग कहते हैं मेरे को तो वही सेवक प्यारा लगता है इतना मुझे प्यारा लगते नहीं तो मेरे में इतना विश्वास है मेरे पक्षपात है समदर्शी मुल्क है सबको, सबको ये समदर्शी कहते हैं, उनकी उदारता है। मेरे सेवक भी अनन्य गति से होते, अनन्य गति से होते वो मेरे को प्यार लगता है। अब अनन्य गति वाला तू अमरों को प्यार लगेगा तो गुल खड़े एक भाव गुस्सा का ब्योरा नहीं नगरी में नहीं रोई बने रे राजिया। भजन करने वाला नहीं होना बरोबरी कैसे दिखे। उसके भजन का चिंतन का क्या मूल्य हुआ। भगवान कहते मेरे विष्णु तो भले ही आ जाओ, मेरे भक्तों को उतारना चाहिए, मेरे को दोषी कहते भले ही। सीता जी का त्याग किया तो राम जी को दोषी कहते, सीता जी को दोषी नहीं कहते। और सीता जी ने तो सीता के रहते हुए अग्नि परीक्षा करते हुए दोष दृष्टि बड़े आदमी थे। अगर त्याग नहीं करते दोष की फैल जाता, त्याग कर जाता दोष राम जी पर आया, सीता को निर्दोष कर दिया अपने दोष से ही। भगवान की चाल है, भगवान संत महात्मा वाली चाल है। संतों की गत रामदास जग से लखिए नजर, बाहर तो संसार से भीतर लूटा था। संत कपटी होते हैं। संत दास संसार में अदर गपी है संत, अदर गपी है संत। ब्रह्म ज्योत सुन में जगे ताकि अब सुन में ब्रह्म ज्योत जगे उठे। सुन में को ज्योत जगती है ऐसी बात न जाए। एक बार रामदास महाराज के संत जा रहे थे, जा रहे थे वो लोग, अरे डाकी आए डाकी डाकी। तो राम जी के रामा डाकी संत है 84 डाकी। डाक में किसको कहते हैं? हाँ डाक 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 ना किसको कहते, डाक किया मानो उसको पार कर किया। रामेश डाकी है 84 डाकी, 84 डाकी सब पिछड़िया तोड़िया कूद गया। तो डाकी हुआ कि नहीं डाके से हुई डाकी। जो संतों की गत रामदास बाहर भीतर सो भीतर उठता था, बाहर तो संसार सा वही खावे है पीवे है सोए है काम करे वैसी बात करे और कैसे पहचान उनको। भीतर उठता था तो डाकी है। रामा डाकी संत है 84 डाकी कैसे। और बोलो रागद्वेष कैसे हो, सुना नहीं रागद्वेष। तू अगर पढ़ता है पढ़ाई नहीं करता चौथे लगे तेरे ये द्वेष है बता। मगर नहीं पढ़े कान पकड़ो नहीं लगाऊ। मैं छोरा पढ़ाया हुआ है मारपीट भी की हुई है। परंतु देखो बोला छोरा है आपस में लड़ जाए थोड़ा सा मारे तो बड़ा जोर से रोता है मां कर शिकायत करता है। अरे महाराज भी गुरु जी चले बहुत जोर से मारते हैं तो आंसू तो आ जाते हैं, बोलता नहीं शिकायत नहीं करता किसी मारे। कारण क्या है, उनके मारने में प्यार है। उसको बच्चा समझता है, छोटा बच्चा भी समझता है इस बात को कि ये मारते मेरे हित के लिए मारते है। माँ मारे तो पहले तो माँ जीतता है फिर आगे दौड़ जाता है, दौड़ जाए मार के सामने खड़ा रहता है फिर दौड़ते फिर सामने खड़ा रहता है। तो सामने क्यों खड़े छोड़ माँ ने बाबर लोग दे दो मिश्री दो मेरे लड्डू आ जाए मेरे पास आ जाए छोड़ दे माँ को एक नहीं मानेगा तू मेरे पास। अच्छी तो माँ ही लगती है कहते तो माँ मारती है, माँ मारती पर मारना नहीं देती। किसी समय बच्चे को माँ मारती हो एक दो आप साथ कर दो उसी समय मारते समय में क्या करते है तेरी मदद कर दू। कोई काम करता हो तो मेरी सहायता कर देनी चाहिए आदमी ने तो मैं लगा लड़ेगी आपसे। मरते हैं तो आप क्या कर रहे हो साहब? मैं तो मदद कर रहा हूँ, थोड़ी सहायता करूँ। ये कर्मयोग की बात है, कोई काम करता हो उसकी सहायता कर देना, कर्मयोग है। मन में जाकर फंसना नहीं, सहायता कर लेना। काम नहीं होता तो सहायता कर, उसमें लगा दिया। बच्चे को जब माँ मारे ना, सहायता करो थोड़ी माँ के। माँ नाराज हो जाएगी। इस वजह से कहावत है, माँ मारे पर मारने नहीं देती, मारती पर मारने नहीं देती किसी को। क्यों मेरे बच्चे मर पड़े? तो तू खुद मार रही है। तो मार के थोड़ी मारती, प्यार से मार। अपनापन है, ऐसे ठाकुर जी का अपनापन है, ऐसे गुरु जी का अपनापन है। काठिया बाबा की धर्मशाला है ना वृंदावन में, बाबा चले गए थे बद्रीनाथ पहाड़ों में, पहाड़ों में गए थे गुरु जी के द्वारे, ठंडी पड़े बर्फ पड़े बाहर, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर बैठो यानी बंद कर जाओ इस बाबर, वो ठंडी वो बर्फ पड़े जिसमें कितना धीर दिए। फिर वो कुछ नहीं किया, भागे नहीं, वही रहे, सिद्ध हो गए वो काठिया बाबा। किसी तरह साल वृंदावन काठिया बाबा में पीछे आवाज इस वास्ते कहते हैं, धमक गुरुओं की सही है तेरा, गिर गिर गुरु नाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृत आजांत नाम महात्मा। जो गुरुजनों की कठोर कठोर वाणी है, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, वे उग जाते हैं, ऊंचे दर्जे पहुंच जाते हैं। कैसे? जैसे मणि होती है, मणि निकलती है पर्वत में, मणि निकलती है उनको साफ करने के लिए, मणि कठोर बहुत होती है तो सांड पर चढ़ते, सांड है ना सर, सर छुरा लगाते हैं जिसने, खुरसान क्या कहते हैं उसको, सांड संस्कृत शब्द है सांड, मतलब काम हो गुरु। गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृत अजंत नरा महात्म अलब्ध शाणोत्कर्षणा, शाणोत्कर्षण नहीं हो, शाण परिवर्तन नहीं हो, न जात मोहनो मलि बसंती। राजा रे मुकुट में मणि वही बसती है जो खर खर खरसे रहती है, चिनगा जो उठे उसे लेती है तब मुकुट में चलती है। ऐसे गुरुजनों की ऐसी तरह सह लेता है, उसे सज जाता है, मिट्टी का ढेला बिखर जाता है, वो सही नहीं सीता, वो थोड़ी मुकुट में चल जाता है, थोड़ी कर लोग भाग जाते हैं, नहीं भागा नहीं, उनकी त्रास है ना। गुरुजन की कृपा पूरी, अरे वजीर सदन की त्रास, बादल कर गर्मी करे जल वर्षण की आस, वजीर सदन की त्रास, सदन की त्रास बड़ी बढ़िया होती, बढ़िया होती तो उनकी त्रास में कृपा ही कृपा भरी, कोरी कृपा भरी, लब लब लेने वाले लेने भाग जाओ बस, भाग जाओ भाग जाओ। हमारे में ऐसे लक्षण नहीं है, मैं आप लोग तो कृपा लो, कड़ी बात कहता हूँ कभी कभी थोड़ा संकोच हो जाता है, मैंने बुरा मान लेंगे क्या कर, मैं उलाना देता हूँ, आवाज दिया नहीं उनका, बेईमानी है बेईमानी कहते लड़ाई करो, मैं बेईमानी कहते तुम लड़ाई नहीं कर, तू बेईमानी उनका बेईमानी है, और बेईमानी है तू बेईमान। मौज हो रही है, भगवान की बहुत कृपा है, सत्संग चर्चा मिल जाए ये भगवान की किसी कृपा है, अपने आपस में राम जी की कृपा कर चर्चा करे। मैं तो संतों से की ओर कहता हूँ, संत मानो आप लोग आओ, अब बैठ भगवान से चर्चा करें, निकलो भाई भगवान, भगवान से चर्चा करो, बोध यंत्र परस्पर कस यंत्र समान नित्य संचित मंत्र से बच्चे प्राण बोध यंत्र परस्पर कथे मान नित्य संचित भगवान चर्चा करे मस्त रहते चर्चा चर्चा सुना रात आपस में चर्चा करे सत्संग चर्चा आपस में करो बड़ा लाभ होगा। कोई बात आपको याद कोई मेरे को कोई किसी को दो तीन चार मिल कर बहना बनाई करके सरसा तो सबको लाभ हो जाता। सब बातें सबको याद नहीं सास ये बड़ी आई वो कहते ये बड़ी आई वो कहते ये बड़ी आई तो सबको बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाती सुनगी चर्चा से मिलती है आपस में चर्चा तुम करना उन्हें विचार करना खुशी बनानी उसमें ये बात ऐसी आज बढ़िया आई आज ऐसी बढ़िया आज ये बढ़िया आई वो कहते नहीं ये बढ़िया आई वो देखो ये बढ़िया आई बढ़िया बढ़िया सब इकट्ठी हो जाए सबको मिल जाए ऐसी चर्चा है भगवान की। जगत की चर्चा सुहाती भगवान की चर्चा सुहाती है भाई ऐसी बात मना प्रसाद तपस्या है मन में प्रसन्न रहना हरदम खुश रहना हरदम प्रसन्न रहना तपस्या ख्याल नहीं किया होगा ये तपस्या है तपस्या में मन की मानस शरीर से वाणी की वाणी से मन की तपस्या श्रेष्ठ है वह प्रश्न मन प्रश्न करा तपस्या है
पांडव तपस्या करा कितना दुख पाया
हाँ बोलो ये तपस्या है मौज मौज है कोरी आप सुन ऐसी विलक्षण मौज है आनंद ही आनंद है कोरा आनंद है निखालस आनंद है बिल्कुल इतना सुगम इतना आनंद इतनी मस्ती की बात नाच ला गया मन खुश हो गया वाह प्रभु वाह कैसी भगवान ने कृपा की भगवान कृपा कर जब जब दीन दयालु राघव दीन दयालु राघव जब 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 दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है संत विशुद्ध मिले पर इसे ही चित्त में ही राम कृपा कर जी ऐसी बात गीता जैसा ग्रंथ मिले ऐसी कृपा से मिले अपने उद्योग से मिले अपने करने को सत्य मिले ये भगवान कृपा से मिलती है कस्तूरी जंगली आदमी पास मिल जाए करोड़पति नहीं मिले जंगली आदमी मिल जाए तो मुला ही नहीं सर बोले तो उसको भी मिल जाए सबको मिल जाए परंतु भगवान की बात है ये तो मिलती है तो भगवान की बड़ी कृपा है। उपनिषद आया है श्रवणा या फिर बहु फिर यो न लभ्य बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलती आश्चर्य ठीक विचार है बहुतों को सुनने के लिए भी अपना भी सत्संग सुनते हैं ना जो कई दिनों से सुनते हैं वे जितने शब्द है नया नहीं सुनता उतना हम नया आदमी तुर्त पूरी कहते हैं तुर्त पूरी शब्द है ये पूरी गिरी भारतीय से है ना हमें भोजन भारती तुर्त पूरी है केवल कोई आदमी होता मैं कहता हूँ भाई तुर्त पूरी है आओ भाई तुर्त गिरी पूरी भारसी भजन आरण्य दस नाम है दस नाम ही संत होते हैं दस नाम गिरी है पूरी है भारसी है वन है अरण्य है और पर्वत है वन है अरण्य है सागर है सरस्वती है मधुसूदन सरस्वती दस नाम है, दस नाम ही संत ब्रह्मानंद गिरी गिरी होते कि महाराज आप गिरी हो पूरी गिरी हो तो गिरी तो हम खा लेते पूरी पूरी भी खा लेते संत समझी हो भूगन पूरी खा लिया ऐसे संतों की बात संतों की बात निराल ढंग की होती भाई दस नाम बताया तो दस है कि नहीं मत गणित भी सेवा तो मान तो याद होते दस बताया तो सगला मैंने याद को क्या बताओ दस हजार ठीक बात है दस ही सही नहीं तो एक दो चार कम रह जाएगा है दस नाम ही संत सन्यासी होते दस नाम ही ठीक है।